तुलसीदास, विषय ज्ञान और भक्ति, पृष्ठ 39। यहाँ तक तो भक्ति और शील का समन्वय हुआ, अब ज्ञान और भक्ति का समन्वय देखिए। गरुड़ को समझाते हुए काकभुशुंडी कहते हैं, ज्ञान ही भगिति ही नहीं कछु भेदा। साध्य की एकता से भक्ति और ज्ञान दोनों एक ही हैं। उभय हरहि भव संभव खेदा। पहले कहा जा चुका है कि शक्ति, शील और सौंदर्य की पराकाष्ठा भगवान का व्यक्त या सगुण स्वरूप है। इसमें से सौंदर्य और शील भगवान के लोक पालन और लोक रंजन के लक्षण हैं और शक्ति उद्भव और लय का लक्षण है। जिस शक्ति की अनन्यता पर भक्त केवल चकित होकर रह जाएगा, ज्ञानी उसके मूल तक जाने के लिए उत्सुक होगा। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, अतः ज्ञान के प्रति यह औत्सुक्य भी भक्ति के समान एक भाव ही है, या यो कहिए कि भक्ति का ही एक रूप है। पर एक ऐसे कठिन क्षेत्र की ओर ले जाने वाला जिसमें कोई बिरला ही ठहर सकता है। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। पृष्ठ 40। जो इस कठिन ज्ञान पथ पर निरंतर चला जाएगा, उसी को अंत में सोहमिस्म का अनुभव प्राप्त होगा। पर इस सोहमिस्म की अखंड वित्ती तक प्राप्त होने की कठिनता को स्वामी जी ने बड़ी ही लंबा और पेचीला रूप बांधकर दिखाई है। इस तत्व को सम्यक प्राप्ति के पहले सेव्य सेवक भाव का त्याग अत्यंत अनर्थकारी और दोषजनक है। इसी से गोस्वामी जी सिद्धांत करते हैं कि सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिये उर्गारी। भक्ति और ज्ञान का तारतम्य अत्यंत गूढ़ और रहस्यपूर्ण उक्ति द्वारा गोस्वामी जी ने प्रदर्शित किया है। वे कहते हैं, ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ऐ सब पुरुष सुनहु हरिजाना। माया भक्ति सुनहु तुम्ह दोऊ, नारी वर्ग जान ही सबको। मुहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह रीति अनूपा। ज्ञान पुरुष अर्थात चैतन्य है और भक्ति सत्वस्थ प्रकृति स्वरूपा है। दूसरे शब्दों में यो कह सकते हैं कि ज्ञान बोधिवृत्ति और भक्ति रागात्मिकता वृत्ति है। बोधवृत्ति राग के द्वारा आकांत हो सकती है, पर एक राग दूसरे राग को दूर रखता है। सत्वस्त राग यदि दृढ़ हो जाएगा तो राजस और तामस दोनों रागों को दूर रखेगा। रागात्मिकता वृत्ति को मार डालना तो बात ही बात है, अतः उसे एक अच्छी जगह टिका देना चाहिए। ऐसी जगह टिका देना चाहिए जहाँ से वह न लोक धर्म के पालन में, न सील की उच्च साधना में और न ज्ञान के मार्ग में बाधक हो सके। इसके लिए भगवान के सगुण रूप से बढ़कर और क्या आलंबन हो सकता है, जिसमें सील शक्ति और सौंदर्य दोनों परमावस्था को प्राप्त होते हैं। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन। मरुत कोटि सत विकुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सो शीतल, समन सकल भव त्रास। काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूम केतु सत कोटि सम, दुराधर्ष भगवंत। यद्यपि कथा के प्रसंग में राम विपर्य के अवतार ही कहे गए हैं, पर भक्त की अनन्य भावना में वे देव कोटि से भी परे हैं। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सतसम संहरता। इस नाम रूपात्मक जगत के बीच परमार्थक तत्व का शुद्ध स्वरूप पूरा पूरा निरूपित नहीं हो सकता। ऐसे निरूपण में ज्ञान का लेश अवश्य रहेगा, या यों कहिए कि ज्ञान ही के सहारे यह बोधगम्य होगा। अज्ञान अर्थात दृश्य जगत के शब्दों में ही यह निरूपण होगा, चाहे निषेधात्मक ही हो। निषेध मात्र से स्वरूप तक पहुँच नहीं हो सकती। हम किसी का मकान ढूंढने में हैरान हैं, कोई हमें मकान दिखाने के लिए ले चले और दुनिया भर के मकानों को दिखाता हुआ यह नहीं है, यह नहीं है कहकर बैठ जाए तो हमारा क्या संतोष होगा? प्रकृति के विकार और अंतःकरण की क्रिया के स्वरूप को ही अधिकतर हम ज्ञान या शुद्ध चैतन्य का स्वरूप समझाया करते हैं। अतः अज्ञान रहित ज्ञान बात ही बात है।